नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि में प्रौद्योगिकी संस्कृति लाने पर बल दे रही है। बजट के बाद के वेबिनार कृषि और ग्रामीण परिवर्तन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार एग्रीटेक के माध्यम से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने किसान पहचान पत्र और डिजिटल भूमि सर्वेक्षण को परिवर्तनकारी कदम बताया। एआई आधारित प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्वेक्षणों की भूमिका पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब इसे संस्थानों और उद्यमियों द्वारा एकीकृत किया जाता है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के तरीकों पर सुझाव आमंत्रित किए।
एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश इस महीने के अंत तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि सुरक्षा बल तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले लाल गलियारे के माओवादियों के सपने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी बंदरगाहों की सुरक्षा CISF को सौंपने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुवे ने दूसरा और एकांश ढल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सफल उम्मीदवारों को उनके समर्पण, मेहनत और लगन ने उन्हें ये उपलब्धि दिलाई है। प्रधानमंत्री ने नए सफर में राष्ट्र की सेवा और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दी। सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC को निर्देश दिया है कि वो 4 सप्ताह के लिए समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP की रिपोर्टिंग को तत्काल निलंबित कर दे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कुछ टीवी समाचार चैनल इसराइल ईरान संघर्ष के बीच अनावश्यक सनसनीखेज और अटकलबाजी वाली सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कवरेज से लोगों में दहशत फैल सकती है। निलंबन 4 सप्ताह तक या अगले निर्देश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा। इसराइल और अमेरिका की संयुक्त सेना और ईरान के बीच संघर्ष का कल 7वां दिन था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार कर दिया और उससे बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने और उसे आर्थिक रूप से पहले से अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा कि कुछ देशों ने संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका के दक्षिण में IRIS देना के डूबने की घटना से कुछ दिन पहले ईरान ने भारत में मौजूद अपने दूसरे युद्धपोत IRIS लावन को शरण देने का अनुरोध किया था। यह जहाज भी अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के लिए भारत आया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये अनुरोध पिछले महीने की 28 तारीख को प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि तकनीकी खराबी के कारण जहाज को कोच्चि में लाना अत्यावश्यक है। इस महीने की 1 तारीख को जहाज को कोच्चि में लाने की अनुमति मिल गई। IRIS लावन 4 मार्च को कोच्चि में आया था और इसके 183 चालक दल के सदस्य वर्तमान में कोच्चि स्थित नौसेना सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग को 21-13, 21-16 से हराकर पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लक्ष्य सेन का अगला मुकाबला कनाडा के विक्टर लाई और जापान के कोकी वातानाबे के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।